ओम शांति। आज क्लास को एक नया रूप दिया जा रहा है। कईयों की इच्छा थी सबके क्वेश्चंस लिए जाएं और उनके उत्तर दिए जाएं। तो आज प्रश्न उत्तर कुछ भाई बहनों ने दिए भी हैं अपने प्रश्न, उनको हम पहले लेंगे, फिर उनका उत्तर सुन के आपको कुछ प्रश्न उठेंगे, फिर उनको लेंगे। प्रश्नों के उत्तर सुन के नए प्रश्न उठते ही है ना मेजर साहब। तो रुपेश भाई प्रश्न पूछेंगे। रुपेश भाई रेडी? चलो पहला प्रश्न पूछो।
ओम शांति। आज के इस संध्याकालीन प्रश्नोत्तरी सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें सभी प्रश्नों से पार जाना है, हमेशा प्रसन्न चित्त स्थिति में रहना है, लेकिन अनुभव ये कहता है कि प्रश्न यदा कदा मन में उठ ही जाते हैं। कई बार प्रश्न जिज्ञासा से जुड़े हुए होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और कई बार संशयात्मक बुद्धि होकर के मन में प्रश्न उठते हैं जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आप मधुबन में आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, और बाबा को कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह पसंद नहीं आता। आपने सुना होगा बाबा कहते हैं प्रश्न बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, अष्टावक्र की तरह है, तुम तो बिंदी बन करके रहो। हम सबके भी शुभकामना है कि आप ज्ञान सरोवर में आए हैं, मधुबन में आए हैं, तो यहाँ से बिंदु बन करके जाएं और हर एक बात को बिंदु लगा सके, इसीलिए आज के सत्र का आयोजन किया गया है। और मैं देखता हूँ भ्राता जी के साथ रह के कि इनके पास रोज कम से कम 100 फोन कॉल्स जरूर आते हैं, कम से कम रोज 40-50 ईमेल्स आते हैं, अनेक पत्र आते हैं, और भ्राता जी पूरे संसार के लोगों के प्रश्नों का समाधान करते हैं और साथ ही उत्तर देते हैं। तो हम ज्ञान सरोवर में रहते हैं, भ्राता जी हमारे साथ हैं, तो हम सबका सौभाग्य है और हमारा अधिकार भी बनता है कि हम इनसे अपने प्रश्नों का समाधान लें। तो हम एक हाथ की ताली से अपने अति प्रिय आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। प्रताप जी स्वागत है बहुत बहुत आपका। प्रताप जी मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ। ये बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं और मैं ये निवेदन भी करूंगा कि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप लिख के दे सकते हैं या सामने माइक रखा जाएगा, आप उससे पूछ भी सकते हैं। प्रताप जी पहला प्रश्न है कि लंबे समय से शारीरिक कष्ट है, इससे निवारण की विधि बताइए।
हाँ, ये समस्या बहुतों को इस समय चल ही रही है और डॉक्टर्स भी कहीं कहीं इसमें हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई ये बीमारी अब लाइलाज हो गई है, लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कि हर बीमारी का इलाज है अवश्य, एक जगह नहीं है तो दूसरी जगह है, एक थेरेपी में नहीं है तो दूसरी में है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, जैसे डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए डॉक्टर लोग ये मानते ही हैं कि दवाई खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, परंतु नजदीक में ही पिछले हफ्ते ही मुझे दो ऐसे सुंदर न्यूज मिले और कुछ तरीके मिले कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो डायबिटीज सदा के लिए ठीक हो जाती है, कुछ लोगों की हो गई। तो लंबी बीमारी कोई चल रही है, पहले तो ये आत्मविश्वास अपने अंदर बढ़ाएंगे कि ये ठीक होगी, अपने अंदर ये विचार न संभालें कि हम कभी ठीक नहीं होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि हमारी मन की शक्ति ही सबसे बड़ा काम कर रही है शारीरिक बीमारियों में, चाहे उनको बढ़ाने में चाहे उन्हें ठीक करने में। तो मैं दो तीन विधि आपके सामने रखता हूँ, तीन विधि सिंपली। एक, किसी भी बीमारी के लिए रात को सोने से पहले हम एक विशेष अभ्यास करेंगे, चाहे किसी भी तरह की बीमारी है, रात को जब हमें नींद आने को होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है, सबकॉन्शियस माइंड अंतर्मन, और रात के समय हमारे अंतर्मन में रोगों को ठीक करने की बहुत बहुत शक्ति होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को सुप्रीम सर्जन है। तो सोने से पहले 5 बार बहुत विश्वास के साथ संकल्प करेंगे मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। मान लो किसी को डायबिटीज ही है तो संकल्प करेंगे मेरी डायबिटीज नॉर्मल हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है कभी लो जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, किडनी गड़बड़ कर रही है मेरी किडनी नॉर्मल हो गई है। कैंसर पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं तीन विधि आपको बता रहा हूँ, ये पहली विधि पर मुझे अभी अभी याद आ गया, मैं दीव में गया था अभी कुछ ही दिन पहले, तो एक बहन मेरे से मिलने आई और एक डायरी और पेन लाई, ये आपके लिए गिफ्ट। मैंने पूछा किस खुशी में, कि आप भूल गए मुझे, मुझे बहुत सीवियर कैंसर था और इन इन विधियों से अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके चेहरे से ही लग रहा था उसकी खुशी, उसकी रौनक कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो उसमें एक विधि ये भी थी, और दूसरी विधि है पानी को चार्ज करके पीना। और पानी चार्ज करने का तरीका है, गिलास में पानी लें, दृष्टि दें, सात बार संकल्प करें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये दो संकल्प बहुत श्रेष्ठ हैं। पानी चार्ज हो गया, उसे पीते समय संकल्प करें इस पानी से मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। और तीसरी, क्योंकि कुछ बीमारियां पूर्व जन्मों से चली आ रही हैं, ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, कई बीमारियां कई जन्मों से भी चली आती हैं मनुष्य को। एक घंटा पावरफुल योग किया जाए कम से कम 21 दिन, और कोई बड़ी सीरियस बीमारी है तो 3 मास, तो योग की शक्ति उन विकर्मों को नष्ट करेगी जिनके कारण वो बीमारी आई है, और इन 3 विधियों से बहुत जल्दी सफलता होगी।
प्रताप जी, ये बात रही कि जिनको बीमारी है, लंबी बीमारी है, जो स्वस्थ हैं वो भी क्या इन विधियों का प्रयोग करते
हैं? वो चार्ज करके पानी पीते रहें तो कई आने वाली बीमारियां रुक जाएंगी।
प्रताप जी, अगला प्रश्न हमारे पास आया है, ये कहते हैं कि लगभग सभी ब्राह्मणों का अनुभव है कि ब्राह्मण जीवन के आदि में जो उत्साह था वो अब कहीं खो सा गया है, अब नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों होता है और फिर से वही उमंग उत्साह कैसे लाया जाता है?
देखिए, आपको याद हो इस पर बाबा की मुरलियां चल चुकी हैं और एक मुरली रिवाइज होकर 6-7 मास पहले आई भी है। जब कोई मनुष्य बाबा के पास आता है तो पहली खुशी उसे होती है, मुझे भगवान मिल गया, जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, जन्म जन्म की सत्य की खोज मिट गई, बस पा लिया जो था कि पाना। नशा चढ़ जाता है तो योग भी अच्छा हो जाता है, स्थिति अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे मनुष्य क्या करता है, मनुष्य की आदत है, वो इधर उधर देखने लगता है कौन क्या कर रहा है, ये 10 साल से हैं, उसने बता दिया कि मेरा योग नहीं लगता तो परेशान हो जाएगा, शायद मेरा भी नहीं लगता, उसका अच्छा लग भी रहा था पर वो सोचता है शायद मेरा योग भी गलत है, इनका 10 साल से नहीं लग रहा तो मेरा कैसा लग सकता है। किसी की कोई कमजोरी देख ली, किसी करेक्शन में लग गए, अपना महान लक्ष्य भूल गया, कहीं क्वेश्चंस उठने लगे, जो रूपेश भाई क्वेश्चंस की बात कर रहा था वो क्वेश्चंस और होते हैं, ये ज्ञान के क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन है टेढ़े, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों टेढ़ा बना देता है मनुष्य को। तो ये बहुत सारी बातें कारण बनती हैं जिससे मनुष्य का नशा उतर जाता है, स्थिति डाउन हो जाती है। फिर से अगर उस स्थिति को प्राप्त करना है तो अच्छे स्वमन का अभ्यास करें, चारों ओर से आंखें बंद कर लें, इम्पोर्टेंट बात, केवल लक्ष्य ही दिखाई दे जिसलिए बाबा के पास आए हैं, जो हम करना चाहते हैं, जिसमें हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन सुंदर होगा, जीवन निर्विघ्न होगा, उस लक्ष्य को मजबूत करें और अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। जरा अमृत वेले कुछ दिन ही अच्छी तरह योग अभ्यास कर लें, मुरली पर अटेंशन दें, तो बहुत जल्दी खोई हुई स्थिति पुनः प्राप्त हो जाएगी।
जिसे बाबा शायद भ्राता जी कहते हैं एक स्लोगन के रूप में कि पर चिंतन और पर दर्शन ये पतन के जड़ हैं और स्वचिंतन और स्वदर्शन यही उन्नति की सीढ़ी है। स्वयं पर केंद्रित रहेंगे तो अपने बचपन के दिन को पुनः प्राप्त,
बस यही हो कि जब हम यहाँ आए हैं तो कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी को भी देखकर ऊपर नीचे कुछ हो रहा है उसे देखकर हम अपने लक्ष्य को न भुला दें।
प्रताप जी अगला प्रश्न है कि ये कहते हैं कि भाई जी आपने कहा था कि 1999 में विनाश होगा और सन 2000 के बाद दुनिया नहीं रहेगी, लेकिन अब तो 2013 आधा खत्म हो गया है, तो अभी कब तक चलेगा?
मैंने तो शायद नहीं कहा था, पर बहुत लोग कहते थे ऐसे। हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में एक प्रोग्राम में एक सन्यासी आया था, मुझे याद है वो आया था 98 में। उसके गले में एक माला थी, लोग उसे पूछ रहे थे, वो माला अद्भुत से दिखाई देती थी, ये माला क्या है? तो उसने कहा कि मैं हिमालय में रहा बहुत समय से, मेरे गुरु ने मुझे ये माला दी थी और मैं एक विशेष विधि से जब इस माला को पहनता हूँ तो मुझे भविष्य दिखने लगता है। तो उसने एक डेट बता दी, 99 कुछ जुलाई की डेट थी, इस डेट पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सबने मान लिया। और एक आम मान्यता थी, आप जानते हैं उस टाइम कि 2000 में क्या क्या हो जाएगा संसार में,
नास्त्रदेमस की भी बात चल रही
थी, नास्त्रदेमस की भी थी, कई वैज्ञानिकों की भी थी, कई और लोगों ने भी ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की हुई थी। ये हमारी बात नहीं थी, ये बाहर से सब प्रचार आया था, क्योंकि हम तो ये जानते हैं जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक विनाश नहीं होगा, और क्योंकि विनाश फाइनली विश्व युद्ध से होना है और विश्व युद्ध एक दो दिन में समाप्त नहीं हो जाया करता, विश्व युद्ध की प्रक्रिया लंबी चलती है। पहले भी जो विश्व युद्ध हुए 5-5 साल हुए, ये नहीं कि लड़ाई होगी और फट से अमेरिका किसी के ऊपर एटम बम डाल देगा, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए हम सब तैयार हो जाएं, हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाए, सत्युग की स्थापना का कार्य भी पूर्ण हो जाए, तब फाइनल विनाश होगा। तो इसमें समय की बात नहीं, लेकिन बाबा ने जो कहा है कि संगम युग 100 साल का है, बस ये प्रतीत होता है, पीछे एक बाबा की साकार में मुरली भी आ चुकी है कि 100 साल पूरे होते हैं 2036 तक, तब तक ब्रह्मा का कार्य पूरा होगा, क्योंकि ब्रह्मा की आयु 100 साल जो मानी जाती है वो 2036 में पूर्ण हो रही है। तो तब तक ये स्थापना और विनाश का कार्य पूर्ण हो जाएगा, विनाश को एक दो दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि रात को हम सोएंगे और सवेरे कुछ नहीं होगा, 10-12 साल विनाश में लगेंगे, क्योंकि विनाश काल ही धर्मराजपुरी भी होगा। तो हमें जल्दी जल्दी तैयार हो जाना है, समय को चेंज करने वाले हम हैं, विनाश भी हमारे लिए रुका हुआ है। ये बात कहने की नहीं है, केवल ये बात इसलिए नहीं है कि बाबा हमें खुश कर देता है, यही सत्य है। जब तक महान आत्माएं तैयार न हो तब तक युग परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हम तैयार हो ही नहीं। सब सोच लें हम तो तैयार नहीं होंगे, अच्छा विनाश रुका रहेगा, लेकिन हर एक चीज का एक समय भी है, अपने समय पर वो कार्य फिर होगा और समय फिर सबको तैयार भी कराएगा।
भ्राता जी इसी से जुड़े हुए प्रश्न है, मैं आपके सम्मुख रख देता हूँ। ये कहते हैं संगम युग कब तक चलेगा और प्रत्यक्षता कब होगी, और साथ ही इनका प्रश्न ये भी है कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, 111 कब स्टार्ट होगा, लक्ष्मी नारायण जी कब गद्दी में बैठेंगे।
बड़े
प्रश्नों की बौछार है,
सबके प्रश्न है। और जब से हमने बाबा की वो साकार मुरली सुनी है, इसको 1 साल लगभग हो गया होगा, मुझे याद है डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, मोहन भाई एमएलए, और हम तीनों ने उस पर चर्चा बहुत की थी और जगह भी उस पर बहुत चर्चा हुई। मैं बस इतना भूल गया कि उसकी डेट क्या थी, नहीं तो हम वो मुरली रख लेते अपने पास। बहुत सुंदर मुरली थी जिसमें इन सब बातों का स्पष्ट उत्तर था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है उस मुरली के आधार से कि ये जो 5 साल अब हमारे सामने हैं, इसमें संसार की हालत बहुत बिगड़ती जाएगी और बाबा की स्थापना का कार्य भी बहुत तेज गति ले लेगा। मानसिक रूप से अनेक मनुष्य त्रस्त होते जाएंगे, मानसिक रोग बढ़ेंगे, शारीरिक रोग बढ़ेंगे। 5 साल के बाद इस संसार की भयावह स्थिति हो जाएगी, विनाश प्रारंभ होगा और ये 10-12 साल चलेगा। उसके बाद होगी प्रकृति शांत, शांत होने में, नॉर्मल होने में भी उसको समय लगेगा और 2036 तक ये सब कार्य पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण का जन्म, उनका बड़ा होकर गद्दी पर बैठना, जब वो गद्दी पर बैठेंगे तब 111 शुरू होगा। उसमें 25 साल लगते हैं या थोड़ा ज्यादा समय, वो तो आगे चल के बाबा उसको स्पष्ट करेगा। और प्रत्यक्षता की जो बात है, देखिए जब संसार में हाहाकार होता है तब ही जय जयकार होती है, दोनों का पाठ साथ साथ चलेगा। और बाबा अपने बच्चों को जय जयकार में, साक्षात्कार में इतना व्यस्त कर देगा कि जिनकी अच्छी स्थिति होगी उन्हें विनाश का कुछ ज्यादा पता ही नहीं चलेगा, वो दूसरी ओर मगन रहेंगे। बाबा उनको सतयुग के सीन दिखाने में, सूक्ष्म वतन के सीन दिखाने में और सुंदर सुंदर सीन दिखाने में व्यस्त करेगा और वो इस समय को बड़े आनंद पूर्वक पास कर सकेंगे। तो ये समय हमारे पास, मैं समझता हूँ अब से और 2029-30 तक का है विनाश काल, जय जयकार का समय। ये धीरे धीरे होगा, उसके बाद प्रकृति पूरी नॉर्मल होगी, भारत में राज स्थापित होगा, क्योंकि श्री कृष्ण का फादर भारत का राजा ही होगा, राजा, इसलिए वो राजकुमार है। और वही व्यक्ति एडवांस पार्टी से गई हुई एक आत्मा होगी जिसके हाथ में ये सत्ता आ जाएगी। कई लोग सोचते हैं ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आएगी, ब्राह्मणों के हाथ में नहीं, ब्राह्मण वाला कांटों का ताज क्यों पहनेंगे, ब्राह्मणों के हाथ में नहीं, ब्राह्मणों में से एडवांस पार्टी में गई हुई एक महान आत्मा जिसमें राजाई संस्कार हैं, वो भारत का अंतिम राजा और वहां से राजा ही ट्रांसफर होगी देवताओं को, ब्रीफली ये।
तो मूल रूप से भ्राता जी, कई लोगों के मन में ये रहता है कि विनाश कब होगा और उस पे अपने पुरुषार्थ को आधारित रखते हैं, तो ये आधार न बना करके हम अपने आप को साक्षात्कार के पाठ के लिए तैयार,
बिल्कुल ये जो आधार है कि विनाश अभी मान लो मैंने कह दिया कि 5 साल के बाद शुरू होगा तो 5 साल मौज कर लें लेकिन ये सबको याद रहे कि जिसने अब से योग अभ्यास अच्छा नहीं किया उनका विनाश काल में बिल्कुल योग नहीं लगेगा। कहीं 5-7 लोगों की मृत्यु हो जाए, बहुत केस होते रहते, एक्सीडेंट हो जाए, 10-12 लोग मर गए, वहां आप जाओ 10 योगी भी खड़े हो वो भी योग नहीं कर पाते क्योंकि वाइब्रेशंस बिल्कुल दूसरे ढंग के हो जाते हैं। विनाश काल में हाहाकार ही इतना होगा, विपदाएं इतनी होंगी, वाइब्रेशंस में इतनी निगेटिविटी होगी कि जो लंबे काल के योगी हैं वही अपनी स्थिति को स्थिर रख सकेंगे, बाकी सब विचलित होते रहेंगे।
माता जी, योग से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया है कि योग के समय मन शांत नहीं होता एवं व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, क्या करें?
बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका समाधान करना भी आवश्यक है। योग के समय व्यर्थ संकल्प इसलिए चलते हैं, बिल्कुल ओपन, सब जानते हैं कि सारा दिन बाह्य मुक्ता में रहते हैं। समय और संकल्पों को जो महत्व बाबा ने दिया है वही महत्व यदि हम भी देंगे तो हमारे संकल्प शांत होते रहेंगे। सब जानते हैं संकल्पों की गति इतनी तेज है, संकल्पों की गति इतनी सूक्ष्म है, व्यर्थ का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि कोई चाहे कि हम योग में बैठें और संकल्पों को शांत कर ले, ये नहीं होगा। बल्कि क्या होता है, जब कोई मनुष्य योग में बैठता है तो वो अपने मन को शांत करता है ना, जैसे ही उसने संकल्प किया मैं आत्मा हूँ, 10 सेकंड के लिए भी मन को शांत किया तो अंतर्मन जग जाता है और अंतर्मन में लंबे काल की मेमोरीज, स्मृतियां भरी हुई हैं, वो काम करने लगती हैं, तो संकल्पों का फोर्स तेज हो जाता है। इसलिए सारा समय अच्छे अभ्यास करने की आवश्यकता है। देखिए व्यर्थ से मुक्त होना ये हमारी सर्वश्रेष्ठ मंजिल है। और कहीं बाबा ने ये भी कहा है, जब तुम व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। कहीं ये भी कहा है कि जब तुम्हारे ये स्थान, तब मधुवन था, अब ज्ञान सरोवर भी है, शांतिवन है, जब तुम्हारे ये स्थान व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो ये स्थान जादू की नगरी बन जाएंगे। जो भी यहाँ पर आएगा उसको अलौकिक अनुभव होने लगेंगे, उनके चित्त शांत हो जाएंगे। ज्ञान सरोवर में ये अभी भी हो रहा है, मुझे तो लोग अपने अपने अनुभव सुनाते रहते हैं, यहाँ आए और क्या क्या हो गया उनको, जादू की नगरी बन जाता है वो स्थान जहाँ के वाइब्रेशंस बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो अच्छी स्टडी करें, अपने को सारा दिन जो बाबा ने एक छोटी सी बात कही, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, तीन ही बातें हम सुनना ही बंद कर देना व्यर्थ, तो बहुत सारे व्यर्थ समाप्त हो जाए। साथ साथ अच्छे स्वमान का सारा दिन अभ्यास किया जाए, इस पर बहुत फोकस करें। ऐसा दीदीपन पर बाबा बहुत ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ सबसे सुंदर सुविधा है कि हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है एक मिनट, उसमें ऐसा दीदीपन का अभ्यास, कोई स्वमान का अभ्यास, थोड़ा सा भी योग, एक मिनट में आधा मिनट भी योग हो जाए, अच्छा चिंतन हो जाए, तो व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। लास्ट बात यही कहूंगा इसमें, व्यर्थ के प्रति रुचि ना हो। बहुत लोग व्यर्थ में रुचि रखते हैं, घंटों समय बिता देते हैं व्यर्थ में, जबकि भगवान ने कहा तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत बहुत मूल्यवान है।
और भ्राता जी, बाबा ने शायद ये भी कहा था कि व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो तो तुम्हें परमात्मा अवार्ड मिलेगा।
बहुत अच्छा स्लोगन था, आपने अच्छी बात याद दिलाई। व्यर्थ को अवॉइड करो तो अवार्ड मिले, भगवान अवार्ड देगा, और उसका अवार्ड यही होगा कि वो हमारे द्वारा संसार की महान सेवा कराएगा।
माता जी, एक हमारी नई बहन है, उन्होंने अपना प्रश्न लिखा है कि मैंने अभी थोड़े महीनों से ही बाबा के साथ का अनुभव किया है, जब से पीस ऑफ माइंड चैनल चालू हुआ है तब से मेरा दिल सांसारिक बातों से बहुत दुखी होकर बिल्कुल ही निराश हो गया है। किसी बहुत ही अपने पर बार बार विश्वास करने के बावजूद बार बार धोखा मिलने से मन इस दुनिया से हट गया है। बाबा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश जारी है, लगता है बाबा को मुझे अपना बच्चा बनाना होगा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से बाबा की नहीं बन पा रही हूँ, अपने दुख से उबर नहीं पा रही हूँ। आपकी प्रेरणादायक क्लासेस पीएमटीवी पर मैं कभी मिस नहीं करती, तो मेरा मनोबल बहुत बढ़े इसके लिए कुछ युक्तियाँ बताएं।
देखिए, जब मनुष्यों से धोखा मिला है तो सीख लेना चाहिए कि संपूर्ण विश्वास केवल एक शिव बाबा में ही किया जाए। बाबा से तो कभी धोखा मिलेगा नहीं, बाबा में संपूर्ण निश्चय रखने से जीवन भी निश्चिंत होगा। और बहुत अच्छी चीज है, अभी ये भी ज्ञान में आए हैं तो थोड़ा सा अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ पर ध्यान दें। बहुत इम्पोर्टेंट चीज वही होती है, जीवन की यात्रा में वही मनुष्य सफल है जो जीवन का एक सुंदर लक्ष्य बना ले। और दूसरी बात इसी के साथ ये है कि उस लक्ष्य को पाने की एक प्लानिंग भी कर लें। प्लानिंग के साथ यदि लक्ष्य होगा तो बहुत जल्दी जीवन सुखी हो जाएगा। रही बात ये कि जीवन में बहुतों पे विश्वास किया और धोखा मिला, इससे मन में निगेटिविटी आ गई है, निराशा आ गई है, एक विशेष तरह की मन की स्थिति बन जाती है ऐसे व्यक्ति की, उसकी खुशी नष्ट हो जाती है और वो ये सोचता है कि सारा संसार ही ऐसा है, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। परंतु संसार तो विश्वास पर ही चल रहा है, हमें परक शक्ति का प्रयोग रखना चाहिए। हाँ, अंधविश्वास या किसी पे भी आंख मूंद कर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब जब सबसे धोखा मिल ही गया इस आत्मा को, तो अब बाबा से सर्वस्व प्राप्त करने के लिए जो बाबा ने अभी कहा, 20 नाखूनों का जोड़ लगा दें और लग जाएं अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में अच्छी स्थिति में, तो ये स्थिति जल्दी पार हो जाएगी।
भ्राता जी, अगला प्रश्न है कि बाबा कहते हैं कि यदि कोई विकर्म हो जाए तो बाबा को बता दो तो आधा माफ हो जाएगा। अब बाबा नहीं है, मम्मा भी नहीं है, दादियां भी केवल मधुबन तक ही रह गई हैं, तो हम ऐसे में किसे बताएं? और एक भय ये भी रहता है ब्रता जी कि हमने किसी को बताया तो वो इसे अपने तक ही रखेंगे या कहीं और फैला देंगे।
बिल्कुल, ये बात पहले से भी आती रही थी। बाबा साकार में थे तो परिवार छोटा था, पत्र लिखे जा सकते थे, बाबा की राय ली जा सकती थी। अब परिवार बड़ा हो गया, अगर 10 लोगों को भी नियुक्त करें तो भी किस किस की कौन सुनेगा और किस किस को कौन राय देगा। गलती हो जाती है तो अव्यक्त बाबा ने इसके लिए उत्तर दे दिया था, क्योंकि जब विदेशी हमारे पास आने लगे तो उनके सामने ही समस्या थी, 2-4 केस हो गए होंगे कि किसी को अपने मन की बात बता दी उसने वो फैला दी, या किसी को अपनी मन की बात बता दी कि हमसे ये गलती हो गई और उसका दृष्टिकोण बदल गया। तो ऐसे में मनुष्य सोचता है कि हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, बताने से तो और हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो वास्तव में जिन्हें हम बताना चाहते हैं उनका दिल बहुत विशाल होना चाहिए, वो बहुत शुभचिंतक होने चाहिए, उनमें समाने की शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा ने इस समस्या का समाधान कर दिया था जो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि स्थूल रूप में अब ये सब संभव नहीं है। तो रात को सोने से पहले या सवेरे बाबा के पास पहुंचे सूक्ष्म वतन में और बाबा को अपनी बात कह दें। कहने के साथ, केवल कहने से काम नहीं चलता। व्यक्त बाबा ने इसका ये भी उत्तर दिया है कि अपनी गलती को दिल से रियलाइज करके, स्वीकार करके, सदाकाल के लिए उस गलती से मुक्त होने का संकल्प कर लें। महसूस करने से, माफ होने का अर्थ यह है, महसूस करने से मन पर जो उसकी निगेटिव छाप पड़ी रहती है, मन जो हमें खाता रहता है कि हमने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी का ऐसा रूटीन बन जाए कि रोज गलती करे और रोज बाबा को बता दे और सोचे बाबा अभी तो माफ कर ही देगा, कम से कम उसके माँ बाप कहें, ये नहीं। गलती हुई, माफी भी तीन बार तक ही मिला करती है। गलती हुई, रियलाइज किया, एक्सेप्ट किया, बाबा के सामने रख दिया सच्चे मन से और सदा के लिए उससे मुक्त हो गए, तो बाबा की शक्ति भी बहुत मिलती है और मुक्त होने में ये शक्ति हमें बहुत मदद करती है। इस सूक्ष्म अभ्यास का ही उचित प्रयोग इसमें होगा तो बाबा तो न किसी को बताएगा, न कोई खतरा होगा बताने वालों को, मन भी हल्का हो जाएगा और हम उस कमी को भरने में सफल हो जाएंगे।
लेकिन कईयों का ये अनुभव है भ्राता जी, या प्रश्न भी रहता है कि हम बाबा से बात तो करते हैं या बाबा को दे भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज हमारे पास ही रह जाती है या हम हल्कापन महसूस नहीं करते, ऐसे में क्या करें?
देखिए, इसके लिए तो मन की सूक्ष्म गति है। मान लो पाप ही ऐसा भारी हो गया है कि वो हमें बार बार खा रहा है, या वो पाप मनुष्य बार बार कर रहा है और बार बार बता रहा है, तब उसका अपना मन ही विश्वास नहीं करता कि बाबा हमें माफ करेगा या हम हल्के हो जाएंगे। इसलिए अच्छी बात तो ये है, इससे भी पावरफुल, कि बाबा की आज्ञाएं, बाबा का ज्ञान रोज मुरलियों के माध्यम से हमें मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब भी रोज मुरली के माध्यम से भगवान हमें मिलता ही है, मिलता है या नहीं, ये मिलन ही तो है। तो हम अपनी चीज को रियलाइज करके उसे ठीक करें तो हल्के होंगे, तो उससे मुक्त होंगे।
प्रातः जी, अगला प्रश्न है, घर एवं ऑफिस का वातावरण निर्विघ्न कैसे बनाएं एवं सभी को अपने व्यवहार से, जैसा बाबा ने कहा है, खुश और संतुष्ट कैसे करें?
देखिए, वातावरण बनता है वाइब्रेशंस से, और वाइब्रेशंस बनते हैं हमारे स्वमान के अभ्यास से। इसलिए किसी भी स्थान का वाइब्रेशंस अगर हमें बदलना है तो दो तीन स्वमान हम ले लें। जैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये तीन सुंदर स्वमान के संकल्प हैं जिससे किसी भी स्थान का वातावरण बदल जाता है। मेरे पास इसके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के आते हैं। एक इंजीनियर का अनुभव मैं सुना दूं, वो एक हॉल में 10-12 इंजीनियर एक साथ बैठ के मैप्स बनाते हैं, नहीं, बिल्डिंग्स के डिजाइन बनते हैं, मैप बनाते हैं। तो कहा, सभी तो नॉन बीके हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई इधर उधर की बातें करता है, कोई गंदी बातें करता है, मेरा वहां मन नहीं लगता। तो मैंने उसे इतना ही सिखाया कि जब तुम अपने उस हॉल में जाओ तो जाते ही सबको आत्मिक दृष्टि से देख लेना एक बार, सब बहुत अच्छी आत्माएं बैठी हैं, बड़े खराब बैठे हैं, सिगरेट पीते हैं, ये नहीं, सब बहुत अच्छी आत्माएं बैठी हैं और मैं हूं परम पवित्र आत्मा। और एक एक मिनट बीच में योग करना और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना और मुझे रिजल्ट बताना। 3-4 दिन के बाद ही उसका फोन आ गया कि भाई ये तो सब कुछ बदल गया, अब मैं जब हॉल में प्रवेश करता हूँ तो लोग पता क्या कहने लगे कि भाई भगत जी आ गए, अब बातें बंद करो। सब चुप, सब अपनी सिगरेट फेंक देते कि अब नहीं पीनी है, भगत जी आ गए। तो मैंने कहा चलो, बुरी भावना से भगत तक तो पहुंचे, आगे योगी तक भी पहुंच जाएंगे। तो इन तरीकों से हम किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस बदल सकते हैं। रही बात सबको संतुष्ट करने की, देखिए काम इतना सहज तो नहीं है, अपने व्यवहार से सबको प्रसन्न करना और संतुष्ट करना, इसमें सबसे मुख्य स्थान होता है हमारी भावनाओं का और हमारे बोलने के तरीके का। अगर हम बोलना जान गए तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी हम सहज पार कर सकते हैं। बच्चा तो बोलना सीख लेता है ना 2 साल में, और लोग 50-50 साल में भी बोलना नहीं सीखते। यही कहते हैं हम तो सीधा सीधा बोलेंगे भाई, लेकिन सीधा सुनने की भी तो ताकत होनी चाहिए, सीधा बोलना तो सहज है, और कोई हमें सीधा बोल दे तो युक्ति युक्त बोलना, समय देखकर बोलना, सम्मान के सहित बोलना, दूसरों की समस्याओं को हल करने वाले वचन बोलना, उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचे ऐसे वचन बोलना, तो हम अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करेंगे, बोलने के तरीके को अच्छा करेंगे और हमारी दृष्टि दूसरे के लिए अच्छी होगी। ये हैं ही खराब तो हमारे बोल खराब निकलेंगे ना। ये सब देवकुल की अच्छी आत्माएं हैं। ऐसी दृष्टि हम बनाएंगे तो किसी हद तक हम दूसरों को खुश और संतुष्ट करने में सफल होंगे।
भ्राता जी, अगला प्रश्न है कि हमारे कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बार बार हमें धोखा देते हैं। जब तक हम उस पर ध्यान देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर अचानक वो सिर उठा लेता है। तो अपने पुराने संस्कारों को कैसे समूल नष्ट करें?
2 तरीके अपनाएंगे। बाबा ने बहुत अच्छी चीज हमें सिखाई है, 5 स्वरूपों का अभ्यास। उसमें भी अपना फरिश्ता स्वरूप और अपना देव स्वरूप, दोनों को हम याद करें, अपने सामने लाएं और अपने को गुड फीलिंग दें, मैं ये हूं, ये नहीं, मेरे संस्कार ये हैं, ये वर्तमान नहीं। ये फीलिंग देते देते वो संस्कार स्थान ले लेंगे इन संस्कारों का, लेकिन साथ साथ कोई अगर बहुत कड़ा संस्कार है तो उसके लिए योग की पावरफुल यानी बीज रूप स्थिति का भी अभ्यास कुछ दिन तक करना पड़े। विशेष उस संस्कार को ख्याल में रखकर कि मुझे इस योग की शक्ति से इस संस्कार को समाप्त करना है, ऐसा 21-21 दिन का भी योग रख सकते हैं किसी संस्कार के लिए। और फरिश्ता सो देवता, ये दिल करने से संस्कारों में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है।
हमारे पास और प्रश्न है, लेकिन जैसा हमने कहा था, यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप सामने आ सकते हैं। आपको भी अवसर दिया जाएगा कि आप अपने मन की बात कहें। यद्यपि हमने कहा था कि आप लिख करके अपने प्रश्न दे दें, और बहुत सारे प्रश्न तो यद्यपि हैं मेरे पास, फिर भी यदि किसी को लगता है कि बहुत आवश्यक प्रश्न है और सभी के उत्थान के लिए, पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है, तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा कि आप सामने आएं और अपने प्रश्न रख सकते हैं। भ्राता जी, तब तक मैं एक दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।
आइए, कोई भी आना चाहे तो मेजर साहब उठ रहे हैं।
जब तक माइक आए तब तक मैं दूसरा प्रश्न भ्राता जी आपके सामने रख रहा हूं, और ये प्रश्न है,
आ जाओ,
थोड़ा सा थोड़ा गंभीर सा प्रश्न लगता है और नया भी लगता है, कि जानवरों के दूध का हमारे मन पर क्या असर होता है?
दूध तो जानवरों से ही मिलता है सारा, केवल बच्चों को उनकी माँ से मिलता है। निश्चित रूप से जानवर भी सप्तमो प्रधान है, और आजकल कई नेचर क्योर वाले दूध न पियो इसका प्रचार भी बहुत करते हैं, और कोई एलोपैथी वाले ये भी प्रचार करते हैं कि दूध पियो, इससे ही कैल्शियम भी मिलेगा और कई चीजें भी। दूध को कहीं संपूर्ण भोजन भी माना गया है, तो कहीं इसको बिल्कुल नए सेवन किया जाए वो भी। रही बात जब सभी तमो प्रधान है तो उनका दूध भी तो तमो प्रधान ही होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में और हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस में इतनी पावर है कि अगर हम दूध को दृष्टि देकर, अच्छे वाइब्रेशंस देकर पिएंगे तो उसकी निगेटिविटी निकल जाएगी।
इसके लिए आप क्या कहेंगे भ्राता जी, जो अलग अलग मत हैं लोगों के, कि कई कहते हैं पीना चाहिए, कई कहते हैं नहीं पीना चाहिए, क्या वास्तव में?
मेरा मत है कि जिनको दूध बहुत अच्छी तरह हजम हो, ताकत दे, वो अच्छी तरह पिए, और जिनको नुकसान करे वो न पिए। सीधी बात, मुझे भी नुकसान करता है तो मैं भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि किसी का डाइजेशन वीक होता है और किसी का पावरफुल। सभी को अपनी अपनी पेट की स्थिति देखकर इसका सेवन करना या न करना चाहिए, क्यों डॉक्टर साहब? ठीक है ना। चलो मेजर साहब आ गए हैं
जी।
ओम शांति। हेलो, ओम शांति। ऐसा है कि हमारा पॉइंट जरा सा है, जो कि आपने कभी अव्यक्त वाणी या साकार वाणी या किसी प्रकार आपने कुछ सुना होगा, कि जो देवता लोग जो थे उनके माँ बाप जो थे वो पवित्र होंगे। अगर वो पवित्र होंगे, एडवांस पार्टी भी है, और वो कैसे पवित्र हुए या बीच में कौन सा फेजेस आया जिससे पवित्र देवता पैदा हुए।
बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत गुही है बेटी ये प्रश्न, क्योंकि सबके मन में उठता है, इसलिए इसका उत्तर मैं थोड़ा संक्षेप में भी लेकिन थोड़ा डिटेल में भी देना चाहता हूँ। देखिए, अब देवताओं को जन्म देने के लिए बहुत सारी आत्माएं एडवांस पार्टी में भी जा चुकी हैं, आप सब इस बात को जानते हैं। जो ब्राह्मण यहाँ से ज्ञान योग करके थोड़ा या ज्यादा देह छोड़ रहे हैं, वो जहाँ जन्म ले रहे हैं उसको हम कहते हैं एडवांस पार्टी। इनमें से ही बहुत सारे बच्चे बड़े होकर देवताओं को जन्म देंगे, लेकिन देवताओं का जन्म क्योंकि योग बल से होता है और योग बल से संतान उत्पत्ति के लिए ये परम आवश्यक है कि देह भी पवित्र हो। पतित देह से योग बल से संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो आत्मा भी पवित्र और देह भी पवित्र। अब ये जो एडवांस पार्टी की आत्माएं यहाँ से जा रही हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनका जन्म अपवित्र ग्रस्त में ही होगा, अपवित्र माँ बाप के द्वारा ही होगा, और इन्हें देना है देवताओं को जन्म, यानी इनका शरीर पवित्र होना चाहिए, लेकिन अपवित्र माँ बाप से पवित्र शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये बीच की जो चेन है इसको कैसे ठीक किया जाता है, एक गॉडली विधान, एक ईश्वरीय विधान मैं इसमें आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो बाबा ने तब स्पष्ट किया था जब दीदी मनमोहिनी ने 83 में शरीर छोड़ा था, तब से मुझे इस बात का पूरा पता है। तो उनके लिए बाबा ने बताया था कि ये विशेष कार्य के लिए जा रही है, मैं उनका ही उदाहरण देकर ये बात आपके समक्ष रखता हूँ और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बाबा ने कहा, तुम सबने जो एक मास योग किया, हम सबने एक मास बहुत योग किया था क्योंकि दीदी कोमा में थी, तो तुम्हारा एक मास का योग गर्भ में उसके शरीर को पहुंचा है, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ा तो गर्भ तो पहले से ही तैयार, गर्भ में बच्चे क्या, बेबी का बॉडी, तो वो जो तुम्हारे योग के वाइब्रेशंस थे वो उस शरीर को पावन कर रहे थे। दूसरी बात, उस आत्मा का अपना भी कनेक्शन गर्भ में उसके नए शरीर से रहता है, उसके अपने प्योर वाइब्रेशंस उसे जाते रहते हैं, उसका भी पूरा असर उस पर पड़ता है। और तीसरी बात बाबा ने कही, अगर कोई कमी रह जाती है तो ऊपर से बाबा वाइब्रेशंस देकर गर्भ में उस शरीर को संपूर्ण पावन कर देते हैं। तो इन तीन तरीकों से अपवित्र माँ के गर्भ से पवित्र बच्चों का निर्माण होता है, बस ये गति है। तो जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं जा रही हैं, अपवित्र माँ बाप से अपवित्र माँ के गर्भ में पवित्र बच्चे का जन्म हो रहा है, तो ये बच्चे आत्मा भी पावन, यहाँ से पवित्र होकर गई, और देह भी पावन, बड़े होकर यही देवी देवताओं को जन्म देंगे। ठीक है मेजर साहब,
अन्य किसी का भी प्रश्न हो तो वो सामने आके बैठ सकते हैं और कर सकते हैं, हम पांच सात मिनट ज्यादा लेंगे आज समय, तो किन्हीं का भी हो तो सामने आके बैठ जाएं और करें। तब तक भ्राता जी, एक प्रश्न आया है, हमारी शायद नए भाई बहने भी यहाँ पे आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, आपको इनका उत्तर तो खैर मिलेगा, फिर भी मैं प्रश्न करता हूँ भ्राता जी से कि ग्रंथों में लिखा है कि देवता अवतरित होते हैं लेकिन आप कहते हैं कि देवता जन्म लेते हैं।
देखिए, अवतरण तो केवल शिव बाबा का ही होता है, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण के लिए भी यही दिखा दिया कि वो गर्भ से नहीं आए, बस माँ ने देखा कि वो अवतरित हो गए, बच्चा सामने था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसको शरीर है उसको गर्भ से जन्म लेना होता है, आत्मा देह में अवतरित होती है, इसी बात को कह दिया कि देवता अवतरित हुए हैं। अवतरित तो केवल परमात्मा होता है दूसरे के तन में, बाकी सभी अपने अपने तन में ही अवतरित होते हैं।
जी मेजर साहब,
एक्सक्यूज मी, ऐसा था कि आपने कहीं मुरली में भी पढ़ा हो या सुना हो या बाबा से पता लगा हो कि आठ गद्दी जो होती है कृष्ण खानदान की, मतलब सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण की, और 12 गद्दियां होती हैं राम की, तो ये कृष्ण जो आठवीं गद्दी है सत्यनारायण नंबर 8, ये कैसे राम के पास जाती है, क्यों आसानी से चली जाती है, वो विधि अगर जानते तो बता सकते।
इसका उत्तर बाबा ने थोड़ा थोड़ा मुरलियों में तो दिया, प्रश्न सबने सुन ही लिया कि आखिरी लक्ष्मी नारायण से राम सीता को राज कैसे ट्रांसफर हो जाता है। पहले तो मैं एक बात को थोड़ा स्पष्ट कर दूं, चिंतन का विषय है कि सतयुग में केवल आठ ही गद्दी नहीं होंगी, आठ होंगी, अष्ट रत्नों के कारण वो आठ गद्दियां फेमस हैं, परंतु एक राजा रानी कितना साल राज करेगा, 150 साल नहीं कर सकता, जन्म लेते ही थोड़ा ही गद्दी पर बैठेगा। अपनी आयु का आधा समय ही कोई राजा राज करेगा, इसलिए गद्दी तो ज्यादा होंगी, सतयुग में भी 16-18 हो जाएंगी और त्रेता युग में भी 24 से ज्यादा होंगी, लेकिन आठ गद्दियों का गायन है क्योंकि आठ गद्दियों पर नंबरवार अश्वतन बैठते हैं, वो फेमस हैं। रही बात ट्रांसफर कैसे होती है, इस पर जब दादी प्रकाशमणि थी हम लोगों ने तब भी उनसे बहुत अच्छी चर्चाएं की और मुरलियों में भी छोटी छोटी बातें आती रहती हैं। ये संभव है, देखिए ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि आखिरी जो लक्ष्मी नारायण हो उसको लड़का और लड़की होने की बजाय दो लड़कियां ही जन्म ले लें, और लड़की की जहां शादी हो वो चंद्रवंश हो, तब प्रारंभ हो गया हो चंद्रवंश, और वो लड़की की वहां शादी करा के गद्दी उनको ट्रांसफर कर दे, बस यही एक कारण प्रतीत होता है ऐसा संभव है। बोलो बहन जी।
जी आपका प्रश्न।
ओम शांति। भ्राता जी मुझे ज्ञान मार्ग में आए थोड़ा समय हुआ है तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत देरी कर दी, मुझे पहले आना चाहिए था। अब मेरे जैसे और भी भाई बहन होंगे जो ऐसा सोचते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ये देरी ना करें, तो हम उनको ज्ञान मार्ग में सहज सुंदर तरीके से कैसे लाएं, आप कोई बहुत सहज और सुंदर सरल तरीका बता दें।
आपने देरी नहीं की, जब आप आ गए वही आपका राइट टाइम है, पहले अगर आपको ज्ञान दिया भी जाता तो आप उसे स्वीकार ही न करते, क्योंकि ज्ञान तो सबको दिया जा रहा है, हमारे मेलों में लाखों लोगों को रोज ज्ञान दिया जाता है, चैनल से भी अब बहुतों को दिया जा रहा है, लेकिन हर एक का एक राइट टाइम है। और एक बुद्धिमान मनुष्य को यही सोचना चाहिए, जैसे हिंदी में कहावत है, जब जागे तब हुआ सवेरा, जब आ गए तो आ गए ना, आप संपूर्ण प्राप्ति कर लेनी है, ऐसे न हो अब इस चिंतन में समय बीत जाए कि लोग तो 50-50 साल से ले रहे हैं, हम तो लेट हो गए। नहीं, लेट बाबा ने बहुत अच्छी उमंग सदा ही दी है, जो लास्ट आए वो भी फास जा सकते हैं, और हम ये देख रहे हैं 2-4 साल से आए हुए ज्ञान वाले भी काफी अच्छा पुरुषार्थ करके आगे जा रहे हैं। रही बात अपने बच्चों के लिए, देखिए बच्चों का भाग्य अपना अपना है, किसी का भाग्य तो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन आप अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाएं, माँ के वाइब्रेशंस जितने सुंदर होते हैं बच्चे जल्दी ही बाबा की ओर, शिव बाबा की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए मैं तो आज तक यही देखता आया हूँ, माँ बाप की श्रेष्ठ स्थिति बच्चों को चरित्रवान बनाने में, उन्हें परमात्म समीपता का अनुभव कराने में, उन्हें योगी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है।
एक व्यक्तिगत प्रश्न आपके लिए आया है भ्राता जी, कि आपको जब मैं ओम शांति कहता हूँ तो आप ओम शांति का उत्तर ओम शांति से देते हैं, लेकिन जब मैं मुस्कुराता हूँ तो आप गंभीर रहते हैं, इसका क्या रहस्य?
हो सकता है मैं पहले से ही गंभीर हूँ और आपने मुस्कुरा दिया, ठीक है अब मैं ध्यान रखूंगा, मैं भी मुस्कुराया करूंगा।
प्रता जी एक अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि भाई जी इस सीजन की मुरलियों से आपने अपने पुरुषार्थ के लिए कौन सी बातें ली हैं और आपका वर्तमान पुरुषार्थ क्या चल रहा है?
बात बहुत अच्छी है और मैंने तभी पकड़ ली थी जब बाबा ने कही थी, यद्यपि ये मेरा अभ्यास बहुत समय से था पर अब ये बिल्कुल नेचुरल हो गया। आपको याद हो तमिलनाडु ग्रुप से मिलते हुए बाबा कह रहे थे, किसी भी कार्य करने से पहले बाप से सफलता का वरदान लो, मुझे ये बात तब से बिल्कुल नेचुरल हो गई, रोज कई बार मुझे ये याद आता है और मैं ऐसा अभ्यास करता हूँ कि बाप दादा आ गए, हाथ मेरे सिर पर रख दिया और कहा बच्चे सफलता मूर्त भव। आजकल हम दोनों ही स्टूडियो में चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसे पहले भी मैं ये अभ्यास करता हूँ, किसी पार्टी से मिलते हैं तब भी करता हूँ, क्लास कराने जाता हूँ रोज ही होती एक दो क्लास तब भी करता हूँ, तो बहुत अच्छा अनुभव इससे रहता है। और दूसरी चीज जो बाबा तीन चार साल से जोर देते आ रहे थे, इस बार बाबा ने कई बार कही, वो भी मेरे अंदर उतर गई, बेफिकर बादशाह। बहुत अच्छे मुझे इसके अनुभव हैं। और मुझे ये रहता है, जिनका फिक्र स्वयं भगवान करे वो अपना फिक्र क्यों करें। जब भगवान कह रहा है मैं बैठा हूं तो मस्ती से डांस करो, तो भला हम क्यों रोएं धोएं। तो मुझे ये बात बहुत अंदर चली गई। एक और बहुत अच्छी बात कि बाबा हमें साथ दे रहा है, ये बात हम मुरलियों में सुनते आते हैं, पिछले संडे को भी सुनी, ये बात मेरे अंदर उतर गई है कि जब भगवान साथ दे रहा है और वो सारे बोझ उठाने का वायदा कर रहा है तो हम अपने पास कोई भी बोझ क्यों रखें। तो मेरा पुरुषार्थ अच्छे स्वमान का चलता है, भिन्न भिन्न ड्रिल्स का चलता रहता है, बहुत इजी रहने का तो पहले से ही चला है, अब और इजी होता जाता हूँ। और मुझे संसार का ड्रामा साक्षी होकर देखने में बहुत आनंद आता है। मुझे ये बात बहुत पक्की हो गई है कि भगवान जो इस संसार का मालिक है, जो यज्ञ का मालिक है, जब वो साक्षी है मस्त रहता है, कोई चिंता नहीं, तो भला हम कौन होते हैं चिंता करने वाले। मालिक निश्चिंत है और हम चिंता करें। तो मुझे ये बात भी बहुत उतर गई है अंदर, ये आजकल मेरे अभ्यास है।
और जी पूरा यज्ञ आपको योगी राज कहता है, तो एक व्यक्तिगत प्रश्न सभी की ओर से कि आपके योग का चार्ट कितना रहता है, या आप निरंतर योग में ही मस्त रहते हैं व्यक्तिगत।
देखिए मैंने अपने प्रारंभिक दिनों में लगभग 16 साल तक 68 से और 84 तक लगभग बहुत चार्ट्स लिखे, और मेरा लक्ष्य रहता था कि जो कुछ बाबा कहे करने को मैं साथ करूं। और मुझे ये बिल्कुल बहुत अच्छी अनुभूति है कि बाबा ने मुझे 16 साल तक बहुत अच्छी तरह गाइड किया है, संदेशों के द्वारा व्यक्त बाबा से। तब हम बाबा से मिलते बहुत थे, पर्सनल मुलाकात साल में कई बार हो जाती थी, और किचन में होने के कारण हमसे बाबा का बहुत प्यार भी था, बाबा हमें अलग से बुला लेते थे। कई बार ऐसी घटनाएं हुई, किसी को मिलने का प्रोग्राम नहीं और हमें बाबा ने नाम सहित बुला लिया कि इसे वो भेजो, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हुई, लेकिन मेरा योग का अभ्यास और व्यक्त मूल्यों के आधार से आज तक भी वो सब चलता आया जो बाबा कहते आए। मैं हमेशा ये संकल्प रखता हूँ, करता ही हूँ, कि जो बाबा की नई नई प्रेरणाएं रोज मिलती हैं, रोज की मूल्यों से भी, उसका मैं रोज ही अच्छा अभ्यास करता हूँ, तो सारा दिन मेरा बहुत अच्छा बीतता है, बहुत अच्छा, मुझे इसकी बहुत संतुष्टि होती है। बाकी कितने घंटे रहता है, देखो ये बात तो गुप्त रखने की होती है, और गुप्त ही रखनी चाहिए।
आपका बहुत 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 धन्यवाद भ्राता जी। सभी भाई बहनों की ओर से सभी एक हाथ की ताली से भ्राता जी का धन्यवाद करेंगे। और दो लाइनें आप सब की ओर से मैं भ्राता जी को प्रेषित करूंगा कि जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज से जलते रहना, जलते रहना, जलते रहना। आपका बहुत 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 धन्यवाद।
अब तो जल तो हुओ को शीतल करना,
मतलब रोशनी देने के लिए। ओम शांति। बाबा की याद में बैठ करके आज के सत्र को पूरा करें।